तो जैसा कि पहले बताया गया था कि हम लोग ये पूरे साल आज से लेकर के नेक्स्ट ईयर आज तक चैतन्य चरितामृत का क्लास प्रत्येक रविवार को होगा, या जब तक से खत्म न हो जाए पूरा चैतन्य चरितामृत, एक साल में हो जाना चाहिए। तो आज से प्रारंभ करेंगे और बीच बीच में किसी का आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि है तो वो तो अलग से है, वो एक्स्ट्रा बोनस है, लेकिन रेगुलर जो है वो इस प्रकार से होगा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक संख्या एक। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशान ईशावतारकम् तत् प्रकाशं च तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकां। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशाश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकान्। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकान्। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकाम। माताजी वंदे आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस गुरुं अंटू द स्पिरिचुअल मास्टर्स ईश भक्तान् unto the devotee of the Supreme Lord. Isam unto the Supreme Lord. Isavatarakan unto the incarnation of the Supreme Lord. Tat of the Supreme Lord. Prakasan unto the manifestations. Cha and Tat of the Supreme Lord. Shakti unto the potencies. Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Sangyakam, name. Translation. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotee of the Lord incarnation, His plenary portion, His energies, and the primeval Lord Himself, Sri Krishna Chaitanya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurjani Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो हम लोगों का अति सौभाग्य है कि श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत जो है वो मास्टर डिग्री है, कोर्स है, ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन जब तक से भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक से हम कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगा तो वृंदावन और राधा कृष्ण के संबंध में हम लोग समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में सर्वप्रथम जब अनुवाद कर रहे थे तो चैतन्य चरितामृत पूरा खत्म करा लिए, पूरा हो गया। उसके बाद में भागवतम चल रहा था लेकिन भागवतम के दसम स्कंद के ही कुछ अध्याय तक प्रभुपाद जी कर पाए। चैतन्य चरितामृत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है श्रीमद् भागवतम उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। श्रीमद् मतलब जो सुंदर हो और भा मतलब भासते, ग मतलब गीयते, वह मतलब वर्तते, इन सब जगह है। भागवत और तो मतलब जो ताप से या दुख से किसी के दुख को दूर कर सके वह है भागवत, या जो बहुत सुंदर है सब प्रकार से। वैसे ही श्री मतलब सब प्रकार से, सभी अलंकारों से विभूषित। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चैतन्य मतलब चेतना, और चरित चैतन्य चरित्र मतलब कैरेक्टर, और अमृत मतलब इमोर्टल। तो जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है, वह है इमोर्टल। ये हुआ श्री चैतन्य चरितामृत। वह आत्मा जिसका स्वभाव है इमोर्टालिटी। और दूसरा अर्थ है कि श्री चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई था, निताई निताई सॉरी निमाई था, और उनका दूसरा नाम चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य का अमृतमयी चरित्र का वर्णन किया गया है। तो दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैतन्य चरितामृत शुद्ध ग्रंथ है जो आत्मा के लिए है। प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं द वर्ड चैतन्य मीन्स लिविंग फोर्स, चरित्र मीन्स कैरेक्टर एंड अमृता मीन्स इमोर्टल। एज लिविंग एंटिटीज वी कैन मूव बट ए टेबल कैन नॉट बिकॉज इट डज नॉट पोजेस लिविंग फोर्स। मोमेंट एंड एक्टिविटीज मे बी कंसिडर साइन और सिम्टम ऑफ द लिविंग फोर्स। इंडीड इट मे बी सेड दैट देयर कैन बी नो एक्टिविटीज विदाउट द लिविंग फोर्स। ऑल दो द लिविंग फोर्स इज प्रेजेंट इन दिस मटेरियल कंडीशन, द कंडीशन इज नॉट अमृत इमोर्टल। द वर्ड चैतन्य चरितामृत देन मे बी ट्रांसलेटेड एज द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग फोर्स इन इमोर्टालिटी। एनीवे इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है तो हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये जो श्लोक है श्लोक एक दो और तीन मुख्य करके प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में विषय वस्तु का निरूपण किया गया है। जैसे भागवत है, भागवत में 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य अस्थानम पोषण उतय मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। भागवत के 10 विषय वस्तु हैं उसका निरूपण शुरू में किया गया है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में। वैसे ही गीता के 5 विषय वस्तु हैं ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। वैसे ही चैतन्य चरितामृत के 6 विषय वस्तु हैं जिसका निरूपण इस श्लोक के द्वारा किया गया है। वो विषय वस्तु क्या है पहले हम लोग देखते हैं और उन विषय वस्तुओं का यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणति अपन करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं वंदे गुरुन ईश भक्ता। पहला है गुरुन गुरुओं का, दूसरा है ईश भक्ता भगवान के भक्तों का। ईश भगवान को, ईश अवतार का भगवान के विभिन्न अवतारों को, तत्प्रकाश और भगवान के विभिन्न विस्तारों का, तच्च और भगवान के स्वयं भगवान के संबंध में जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य यानी चेतन महाप्रभु के का। तो 6 तत्व जो हैं उसमें से प्रथम तत्व है गुरुन। इस अध्याय का भी नाम है द स्पिरिचुअल मास्टर्स। गुरु यहां पर वंदे गुरुन कहा गया है। कभी भी हम लोगों को गुरु शब्द कहा जाए तो गुरु से समझना चाहिए गुरुन, एक नहीं अनेक गुरु। यही वास्तविक समझदारी का ध्येय है या वास्तविक समझदारी का पहचान यही है कि गुरु शब्द जहां भी आए तो ये नहीं कि जिसको जिसने मुझको दीक्षा दिया वो, नहीं, वो बड़ा लिमिटेड समझदारी है, वो कनिष्ठ प्रकार का समझदारी है। गुरु का मतलब होता है गुरुन, हमेशा गुरुन गुरु पुलरल नंबर में है। हम लोग गाते हैं प्रत्येक दिन वंदे हम श्री गुरुन है और क्या है श्रीजित पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवास गुरुन, यहां पर गुरुन आया हुआ गुरुन वैष्णवास। तो सब के सब वैष्णव गुरु हैं, विभिन्न प्रकार के गुरु हैं। गुरु मतलब जो हमें कुछ शिक्षा दे, कुछ सिखाए, जो बतलाए, और मुख्य करके क्या बतलाए, एक लौकिक गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दोनों गुरु कहलाते हैं। पहले जमाने में हम लोग गुरु जी कहते थे स्कूल में, आजकल चीटर कहते हैं या टीचर कहते हैं, जो भी कहते हैं, पहले गुरु जी कहते थे, बाद में शिक्षक हो गए, बाद में टीचर हो गए, तो पहले गुरु जी कहा जाता था। तो भौतिक ज्ञान को देने वाले भी गुरु होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को, तो यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान से ही लेना चाहिए। तो गुरु का परिभाषा भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा प्रदत्त है हम लोगों को। गुरु का क्या काम है, गुरु क्या करता है, कहते हैं कार्पण यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्धचेत यस्त्रया निश्चितान ब्रूहि तन्मे शिशस्ते हंसादिमां त्वाम प्रपन्न। श्रेयान, श्रेयान गुरु का एक ही काम है कि श्रेयान अत्यंतिक कल्याण, अल्टीमेट बेनिफिट प्रदान करना, और अल्टीमेट बेनिफिट है कि कृष्ण से संबंध स्थापित कर देना। तो गुरु का एक ही काम है कि कृष्ण से संबंध स्थापित कराना, ये गुरु का असली धर्म है। जो कृष्ण से संबंध स्थापित कराता है वह गुरु कहलाता है। यदि एक कोई सामान्य व्यक्ति है, यदि हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा सो गए और दूसरा जगा दिया हमको, तो क्या हो गया, गुरु हो गया, क्योंकि हम माया में जा रहे थे, सो रहे थे, अब क्लास सुन रहे हैं और नींद आ गई, हमको भी आती है, बगल वाला जगा दिया तो हो गया गुरु, क्योंकि हमारा संबंध खत्म हो रहा था, टूट रहा था, लेकिन वो क्या किया, हमारे संबंध को स्थापित करा दिया। तो गुरु समझना बड़ा आसान है यदि हम समझना चाहें, तब हम लोग समझने का ढोंग करते हैं, फिर समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमको दीक्षा देता है उसको तो गुरुजी कहते हैं, और अन्य लोगों को अभी इस्कॉन में इसकी पढ़ाई चल रही है, डिसाइपल कोर्स, यही बात बताने के लिए, और गुरुओं को भी पढ़ाया जाता है कि गुरु कोर्स, तो गुरु और डिसाइपल कोर्स पढ़ रहा है, चलकर चल रहा है। शास्त्र बहुत क्लियर है, जन्म लेते हैं बाप मां प्रथम गुरु हुए, हमारे जीवन में बहुत लोग हैं जो गुरु का काम करते हैं। गुरुओं में भी कैटेगरी है, सब एक नहीं है, एक कहलाते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, एक कहलाते हैं शिक्षा गुरु, और एक कहलाते हैं दीक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु कई एक हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमको यहां से जाना है रेलवे स्टेशन, और कोई व्यक्ति आपको एड्रेस दे दिया है कि रेलवे स्टेशन जाने का एक रास्ता ए है, तो जिसने एड्रेस दिया वह कौन है, पथ प्रदर्शक गुरु। अब यहां से जाए, जैसा कहा गया यहां से चिड़ियाघर जाओगे, ये सीधे रोड जाएगा वहां चिड़ियाघर, अब चिड़ियाघर से रोड जाता है सीधे बाद में राइट, अब कहीं वहां भटक जाओ चिड़ियाघर पर जाकर के, और कोई दूसरा रिक्शा वाला है, टंगा वाला जो भी मिल गया उससे भाई पूछ लो कि ये रास्ता ठीक चल रहा हूं मैं ना, तो वो भी कहलाता है क्या, पथ प्रदर्शक गुरु। तो जितने लोगों से पूछते जाओगे वो सब पथ प्रदर्शक गुरु है, कब तक, जब तक से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाओ। लक्ष्य तक पहुंचने में पथ प्रदर्शक लोग हेल्प करते हैं, तो रास्ता बतलाते हैं। तो मंदिर में भी वैसे बहुत पथ प्रदर्शक गुरु हैं। उसके बाद हुए शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देते हैं आध्यात्मिक राज में उन्नति करने के लिए, पथ प्रदर्शक गुरु ग्रॉस हुए, रास्ता दिखाते हैं बाहर से, आंख से दिखाते हैं। शिक्षा गुरु सटल हुए, यानी बुद्धि देते हैं। और दीक्षा गुरु जो होते हैं उनसे संबंध दिल से होता है, क्योंकि असली दीक्षा गुरु जो हैं वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, जिनका नाम है चित्त गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो जितने गुरु लोग हैं ये सब उन्हीं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ही ये लोग प्रतिनिधि हैं। तो असली गुरु बैठे हैं कहां पर? अरे हुंकारी भरो, दिल में, चित्त गुरु के रूप में। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च इत्यादि उनका काम है, और वहीं से बैठ करके डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं। अब उन तक पहुंचने के लिए ये दो लेयर हमारे पास है, एक ग्रॉस है और एक सटल है। तो ग्रॉस स्टेज पर या ग्रॉस प्लेटफॉर्म पर जो सहयोग करता है वो कहलाता है पथ प्रदर्शक गुरु, और सटल स्टेज पर ज्ञान दे करके, दोनों प्रकार का ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, दोनों ज्ञान दे करके जो हमको आगे बढ़ाता है वो कहलाता है शिक्षा गुरु। इसीलिए मात्र लेक्चरबाजी करने से काम नहीं होगा, ये तो थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि मंदिर मार्जन करना मतलब दिल को मार्जन करना है, तो भक्त शिक्षा ले लिए, लेकिन हमको भी करना चाहिए, हम भी मार्जन करेंगे तो वो जो व्यक्ति जिसको हम शिक्षा दिए हैं वह उसे अच्छे तरह से आत्मसात कर पाएगा। इसलिए भगवान आचरण पर ज्यादा जोर दिए हैं, यद यद आचरति सृष्टा तत्तत एव इतरतो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस श्लोक में देखा जाए तो आचरण पर तीन बार जोर दिया गया है, तीन विशेषण किया गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् चार बार, बल्कि यत यत और तत् तत् आचरण पर चार बार दो विशेषण दिया गया, यत यत और तत् तत्। लेकिन प्रमाण पर, थ्योरी पर केवल दो बार, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देव इतर स यत प्रमाण कुरुते, यत एक बार प्रमाण पर, थ्योरी पर, सयत प्रमाण गुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। थ्योरी पर केवल दो, आप लोग कुछ मतलब अपने से आ जाएगा, वो भी सुनने आया है, तो दो बार केवल उस पर जोर दिया गया है, लेकिन आचरण पर चार बार। चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए हम लोगों को प्रैक्टिकल बात सिखाने के लिए, आपने आचारी प्रभु जगत ही सिखाए, अपने स्वयं आचरण कर करके जगत का वो शिक्षा दिए। कहते हैं कुछ लोग आचरण करते हैं और कुछ लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर आचरण भी करते हैं, असल शिक्षा भी देते हैं और आचरण भी करते हैं। तो शिक्षा गुरु एक नहीं अनेक हो सकते हैं, अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु मात्र एक होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर बोथ आर द इक्वल एंड आइडेंटिफिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। देखिए ग्रॉस चीज को प्राप्त करना या छोड़ना कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, ये शरीर ग्रॉस है, इस शरीर को प्राप्त करना और छोड़ना उतना कठिन नहीं है। ये जो शरीर है कर्म के अनुसार चल रहा है और शरीर प्राप्त होगा, कुत्ते का, गधे का, चींटी का, मच्छर का, मनुष्य का, कोई देह प्राप्त होगा। जीवात्मा बिना देह के कभी नहीं रह सकता है। तो इस देह को प्राप्त करने में और इस देह को छोड़ने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। हम तो देह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, कोई देह नहीं छोड़ना चाहता है। असली स्ट्रगल जो है वो जो सटल देह है उसको छोड़ने में, मन बुद्धि अहंकार से जो बना हुआ देह है उसको त्यागने का असली स्ट्रगल है। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के प्राय प्रत्येक पेज में कहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर ए स्पिरिट सोल। बार बार क्यों कहा जाता है? ये शिक्षा है ताकि हमारे भेजा में, बुद्धि में ये समझ में आए कि हम लोग देह नहीं है, हम आत्मा है। तो ये सटल चीज है। तो सटल वस्तु के त्याग के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ती है, ग्रॉस के लिए नहीं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ जान लेता है। देखिए ना, ये मोबाइल फोन में इतना छोटा चिप्स के द्वारा हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर लेते हैं, वो कैसे प्राप्त हुआ? ये ग्रॉस बॉडी से हुआ? नहीं, वो सटल बॉडी के द्वारा। किसी के ब्रेन किसी का काम किया है, प्लेन उड़ रहा है, कितने लोगों का जीवन उसमें है एक्यूरेटली, ये किसी का ब्रेन उसमें लगा हुआ है, सटल बॉडी। वैसे ही सबसे फाइनेस्ट इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, जो बिना डीजल और पेट्रोल का प्लेन उड़ा देते हैं, कितने उड़ते रहते हैं आकाश में, और उनसे भी फाइनेस्ट जो है वो है भगवान, सुप्रीम इंजीनियर जो है भगवान। यंत्रारूढ़ानि माया, कैसे माया के द्वारा यंत्र को चलाते हैं, चला मयाधक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानि वकौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान कैसे माया के द्वारा सबका सब कार्य कराते हैं और माया उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ब्रेन का मतलब सामने तो सोचना ठीक है, लेकिन जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको देखना ब्रेन का काम है। जो देखना जो सामने है यह देखना तो आंख का काम है, वो ग्रॉस है, लेकिन जिसको नहीं देख सकते हैं वह देखना ब्रेन का काम है। जैसे कभी कभी हम कुछ गलती कर देते हैं, कहते हैं भाई योर ब्रेन, तुम्हारा बुद्धि कहां है, देखा नहीं उसको, यहां बैठे बैठे What happened is not the matter. What can happen? वो ब्रेन का काम है। तो वह शिक्षा गुरु का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखा जाए तो स्पिरिचुअल लाइफ में शिक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के विषय में, लेकिन डे टू डे लाइफ में शिक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है। दीक्षा गुरु पहले का अलग तरीका था दीक्षा का, और आज का दीक्षा का अलग तरीका है। पहले दुर्वासा मुनि 60,000 चेलों को दीक्षा दे दिए, और 60,000 चेले उनके साथ में चलते थे, जहां जाते साथ में चलते थे। उस समय मंदिर वंदिर नहीं बना था, कोई मंदिर का प्रेसिडेंट है, मंदिर सफाई करने वाला चाहिए, वो सब नहीं था, वो सब व्यवस्था था, वो अलग बात है। या गुरु आश्रम है जहां पर सब लोग हैं, लेकिन सब जगह भी शिक्षा गुरु का स्पेशल ही पोजीशन है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्येक चैप्टर के अंत में अपने समस्त शिक्षा गुरुओं को प्रणाम किए हैं। अंतिम श्लोक जो है प्रत्येक का, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। गुरु को प्रणाम करते हैं शुरू में भी और अंत में भी। तो यहां पर कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस। रूप रघुनाथ यानी स्वर्ग गोस्वामियों के चरणों में भी प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत का ये अनुलेखन किए हैं, लिखन किए हैं। मैं कहता कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु बोथ आर इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। वन कैन हैव मेनी शिक्षा गुरु बट वन शुड हैव ओनली वन दीक्षा गुरु। तो यहां पर वंदे गुरुन पथप्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो पूरे चैतन्य चरितामृत में इन लोगों का वर्णन किया गया है, पथ प्रदर्शक गुरुओं का भी। शिवानंद सेन का एक कुत्ता था उसका भी गणना आता है पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में। कुत्तों का काम क्या है? पारा देना। हम तो रात को सो गए हैं, कुछ अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो तो कुत्ते भौंकते हैं तो हमको जगा दिए, तो रास्ता दिखाए, तो पथ प्रदर्शन गुरु हुए। तो इस प्रकार से पूरे चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन किया गया। मुझे याद है एक बार हम लोग, हमारे एक मित्र थे, अब नहीं है इस संसार में, उनका नाम था ब्रजनंदन प्रभु, हम दोनों क्लास में थे। हम एक बार पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ करके नोट बना रहे थे कि कौन कौन पथ प्रदर्शक गुरु है, कौन शिक्षा गुरु है और कौन किसका दीक्षा गुरु है। वो हमारा प्रोजेक्ट हाफ वे रहा, वो बेचारे चल बसे और मैं बॉम्बे जाकर के स्टक हो गया। नहीं तो पहले हम प्लानिंग कर रहे थे। तो हो सकता है हमारे अधूरे काम को कोई आप लोग कर लेना। पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ो और उसमें से पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का लिस्ट बनाओ। इतना बड़ा नहीं, 17 वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन एक वॉल्यूम जरूर हो जाएगा, एक अदब वॉल्यूम इसमें है। एनीवे, तो वंदे गुरुन ईश भक्ता। तो पहले गुरु का, उसके बाद ईश भक्त। ईश मतलब भगवान और भक्त मतलब भक्त। हमें भगवान और भगवान के भक्त के संबंध में सुनना चाहिए, यही सुनने का विषय वस्तु है, भगवान और भगवान के भक्त। दशम स्कंद भागवतम में भी एक सब्जेक्ट मैटर यही है। पोषण उदय मनो ईशानुकथा, ईशानुकथा है और यहां पर ईश भक्तान, वहां पर ईश अनु, ईश मतलब भगवान और अनु मतलब फॉलोअर, भगवान और भगवान के फॉलोअर का बात भागवतम में किया गया है। ईशानु कथा, उसके बाद निरोध, वैसे ही ठीक वैसे ही आ रहा है ईश भक्तान एंड ईश, वहां पर निरोध आया हुआ है। निरोध भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है दशम स्कंद, और यहां पर इस मतलब भगवान चेतन महाप्रभु के संबंध में। तो इस भक्तान, भक्त बहुत हैं संसार में, भक्त कौन नहीं है संसार में, सब के सब भक्त ही हैं, अंतर इतना ही है। भक्त क्यों है? क्योंकि वे भगवान के अंश हैं। भज धातु से बना हुआ है, भज मतलब होना, किसी का होना। तो जीवात्मा किसी का है, और किसका जीवात्मा है? भगवान का। भगवान गीता में कहते मामे अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो जितने जीवात्माएं हैं वो भगवान की है। तो भगवान का होना, भज मतलब होना। ये हैं, अब वे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, हैं लेकिन संबंध जो है उसको स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जीव दूसरे का नहीं हो सकता है, जीव माया का अंश नहीं हो सकता है, जीव चींटी और पहाड़ का अंश नहीं हो सकता है, जीव जब भी अंश होगा तब भगवान का अंश होगा। और इसी बात को याद करना भक्ति कहलाता है, और जो व्यक्ति याद करता है वो भक्त कहलाता है। तो ईश भक्त यानी जो ईश के यादगारी में लगा हुआ है वो भक्त कहलाता है। पहले जमाने में यादगारी करने के तरीके थे, और अच्छा तरीका था रट करके याद करना। आप लोग जानते हैं रट करके याद करना है, क ख ग घ अंग पढ़ते थे है? जोर से उच्चारण करते थे और इस प्रकार से वस्तु को हम याद कर लेते थे। तो वही बात आज भी है, ईश को याद करना है, भगवान को याद करना है तो रट रट करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान को याद करने का बड़ा सरल तरीका है। ये भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। पहले हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, चाहे जो भी रट करके यादगारी आती है, विद्या प्राप्त नहीं होती, केवल यादगारी होती है, बस फर्स्ट स्टेज, नॉलेज दूर है। नहीं तो हमारे एक पंडित जी थे, संस्कृत के पंडित थे, कहते थे रटंत नहीं चपंत भोजनम पचंत नहीं, दबा करके यदि खा लो तो पचेगा नहीं। और कैसे रटंत क्या बोलते थे, रटंत विद्या अवंत नहीं, ऐसे कुछ बोलते थे। नहीं हमारे पंडित जी बोलते थे, बोलता हूं संस्कृत के पंडित थे, रटंत विद्या अवंत नहीं चपंत भोजनम पचंत नहीं। तो रट करके याद करो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, स्मृति बना रहेगा। जैसे मैं वो कहानी कहता हूं ना कि वो शिकारी था और उसके चार पांच नहीं एक बैलिया एक आदमी था, उसके पास तोते थे, गुरुजी थे, और तोते पढ़ा बेटा पढ़ो, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। तो बेटा रट करके याद तो पूरा कर लिए पूरा, और डेली पढ़ते थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा उसमें लोभ से फंसना नहीं। उनको मालूम शिकारी किस जानवर का नाम है, दाना क्या होता है, जाल कैसा होता है, उसे मालूम नहीं था। एक दिन शिकारी आया जाल बिछाया दाना डाला, सब उसे फंस गए हैं और पढ़ रहे हैं शिकारी आएगा जाल बिछाया दाना डालेगा उसमें लोभ से फंसना नहीं, सब पढ़ रहे हैं। तो स्मृति तो हो जाए, ज्ञान हो जाए, मतलब कि यादगारी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। और वह जो ज्ञान है वह होता है गुरु के कृपा से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय। तो इसका मतलब है ना कि केवल दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, प्राय शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर लेटर ऑन, ऐसे ही कुछ है कि तो कहते हैं इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर जिसे हम डेली इंटरेक्ट करते हैं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा हमारी जो पद्धति है वो दीक्षा पद्धति नहीं है, ये परंपरा हम लोगों की है, वो डिसिप्लिक सक्सेशन जो है वो शिक्षा की पद्धति है, दीक्षा की पद्धति नहीं है। तो शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से ज्ञान अर्जित होता है। दीक्षा से ज्ञान अर्जन करने की योग्यता प्राप्त होती है। जैसे स्कूल में कोई जाकर के नामांकन कराता है, वो तो घर भी पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या, वो नामांकन करना मतलब दीक्षा लेना। असली जो ज्ञान है वो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि शिक्षा गुरु से भी ले सकते हैं, दीक्षा गुरु से भी ले सकते हैं। दीक्षा गुरु का मतलब नहीं कि वो शिक्षा गुरु नहीं है, वो शिक्षा गुरु भी है, वो शिक्षा दे सकता है। तो इस भक्तान, इस भक्तान, भगवान के भक्तों का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया। इस भक्तान, ईसम, यहां पर सब बहुवचन है, गुरुन बहुवचन है, इस भक्तान बहुवचन है, लेकिन ईसम एक वचन, क्योंकि भगवान कितने हैं, हजार हैं, भगवान एक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण एक ही। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। सुत गोस्वामी जब भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर लिए, उसमें कृष्ण और बलराम का भी वर्णन किए, तो पूरा वर्णन करने के बाद कहते हैं एते च अंश कला पुंस, अब तक से जितना मैं वर्णन किया हूं ये सब परम पुरुष के या तो अंश हैं या कला हैं, लेकिन इन्हीं में से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन्हीं में से, वो भी भगवान है, सब भगवान है, लेकिन इन भगवानों में से जो कृष्ण जो हैं वे स्वयं भगवान हैं। भगवान ही नहीं है, स्वयं भगवान। भगवान और स्वयं भगवान में अंतर है। भगवान तो राम भी हैं, परशुराम भी हैं, लेकिन स्वयं भगवान जो हैं, स्वयं भगवान ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही स्वयं भगवान है। यहां तक कि मथुरेश कृष्ण द्वारकाधीश ये लोग भी स्वयं भगवान नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही एक मां स्वयं भगवान है, और वो है ईसम। ईसम शब्द मतलब एक वचन, एक है भगवान, एक है। उसके बाद अन्य भगवानों का ईस अवतार कान, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किया था। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कीजिए। अवतारम ही असंख्यानाम, भगवान के अनंत अवतार हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो वही प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में अवतारों का वर्णन करने के बाद वे कहें इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वही यहां पर गुरुन बहुवचन, इस भक्तान बहुवचन, भक्तों के विषय में, गुरुओं के विषय में, ईसम भगवान के विषय में, भगवान कौन है, भगवान का कलर क्या है, भगवान देखने में कैसे लगते हैं, भगवान क्या करते हैं। रूप गोस्वामी भगवान चेतन महाप्रभु के समय कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजदपासना ब्रजवधु वरगेणवा कल्पिता। कहते आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, चैतन्य महाप्रभु ब्रजेश तनय श्याम सुंदर का आराधना, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, वो ब्रजेश तनय का निवास स्थान क्या है, वृंदावन, मथुरा भी नहीं, द्वारिका भी नहीं, तद्धाम वृंदावनम। करते क्या है, रम्या, रमण करते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, पूरे ब्रज के गलियों गलियों में, बितियों में, गलियों में, कुंजों में, निकुंजों में घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ हैं कृष्ण। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वरगेण वा कल्पिता, और वैसे घुमक्कड़ आदमी का लोग उपासना भी करने वाले हैं। आज फॉलोअर कमी थोड़ी है। कौन है? ब्रजवधु, ब्रज की वधुएं, यानी ब्रज की गोपांगनाएं उनकी उपासना करती हैं। गोपों का बात नहीं आया है, गोपियों का बात आया हुआ है। खैर उस पर हम बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि गोपियों का जो उपासना है सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इसका मतलब कि गोप का ऐसा नहीं, गोप का नहीं, गोप का भी है, लेकिन गोपियों का उपासना सर्वश्रेष्ठ। ब्रजवधु जितने भी ब्रजंगनाएं हैं, भागवत महापुराण में वो जागिक ब्राह्मणों कथा आता है, कृष्ण बलराम बेचारे भूखे थे, भगवान ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो ये लोग इंसल्ट कर देंगे, तो उन्होंने ग्वाल बालों को भेजा कि तुम लोग जाओ जाकर के और कहो कि कृष्ण बलराम नहीं हम लोगों को भूख लगा है कुछ भोजन दीजिए, ब्राह्मण लोग हैं। कृष्ण बलराम बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम ले अपने लिए मांग करके लाओ। वो ब्राह्मण के पास गए और छोटे बालक थे। कहा जाता है शास्त्रों में कि स्त्रियों को ब्राह्मणों को और बुड्ढों को पहले खिलाना चाहिए, बच्चे भूखे हों भगवान को भोग लगे मत, भक्त बच्चों को खिला देना चाहिए। तो वे लोग गए और जाकर के बहुत भूख लगाए, गाय चराए हैं, भूख लगाए तो खाने पीने की व्यवस्था कराइए। वो भी ब्रज में जहां राजरानी स्वयं सबको खिलाती हैं, और ये अपने समय हमारे बाप का धन है, राजरानी खिलाती समझते हमारा है। ब्रज में कोई जाकर मधुकरी मांग सकता है? ये तो पंडित जी लोग थे, जाने पहचाने वाले, ज्ञान वाले थे। ये लोग दरवाजा बंद कर दिए ना, वो भक्त बदमाश कहीं का अभी भोग नहीं लगा तुम कैसे दे देंगे, भगा दिए। अब कृष्ण बलराम के पास गए तो भगवान ने कहा कि देखो एक बार ऐसा करो, अब उनके पास मत जाओ, अब गोपियों के पास जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ, उनसे मांगो। तो ग्वाल बाल बोल नहीं नहीं एक बार मुंह जल गया है, अब हम नहीं जाएंगे। अरे वो भगा दिए, कहीं देखेंगे उनकी पत्नियों के पास या पत्नियां कहीं बोल दे डंडा मार खाएंगे हम लोग, पहले डंडा नहीं खाए, डंडा खा सकते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तू अपने लिए मत मांगना, पहले बार तू अपने लिए मांगा, इस बार हमारे लिए मांगना, जाकर कहो कि अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, कृष्ण और बलराम के नाम पर दे दो। भीख मांगने वाले ही करते हैं ना, भगवान के नाम से दे रहा है, उनका ही बदलता रहता है। दाढ़ी अल्लाह के नाम से दे दो, हरे कृष्ण के नाम से दे दो, जिसको देखेंगे वो शिव का भय भगवान शिव के नाम पर दे दो। एनीवे तो ये लगता है भीख मांगो का परंपरा कृष्ण ही शुरू किए थे, कह कि जाओ और कृष्ण बलराम के नाम से मांगो, कहो कृष्ण बलराम गोचारण करने के लिए आए हैं, बहुत भूखे हैं और उन लोगों को भूख है। तो ग्वाल बाल आए और आकर के, और जैसा कृष्ण बलराम बताए थे वैसा ही किए, आकर के उन ब्रजवधुओं से कहे कि कृष्ण बलराम गोचारण करने आए, वहां बैठे हैं, बड़ी भूत लगी है और वे भेजे हैं हमको आपके पास कि कुछ खाने के लिए भोजन का व्यवस्था। तो जितना पकवान था जग के लिए जो पंडित लोग नहीं देना चाहते थे, इन ब्रजवधुओं ने सब दे दिया, कहा लेकर जाओ कृष्ण बलराम को तृप्त करो। तो आप समझ सकते हो कितने एडवांस हैं ब्रजवधु में। इसीलिए परकीय भाव या ब्रजवधु भाव बहुत श्रेष्ठ है, जिसका उपाय चैतन्य महाप्रभु का यह भाव था, राध्यो भगवान ब्रजेस्तन तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पित। सबकी इच्छा को भगवान पूरा करने वाले हैं ब्रजनंदन श्याम सुंदर। और कैसे है, श्रीमद भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापमर्थो महारूप गोस्वामी कहते हैं श्रीमद भागवतम प्रमाणमलम, भगवान चेतन महाप्रभु का प्रमाण जो था वो भागवत था, और महाप्रभु के फॉलोअर का जो भी प्रमाण है, प्रमाण जो है भागवत प्रमाण है। भागवतम प्रमाणम प्रेमापमर्थो महान। और भागवत महापुराण का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम का प्राप्त कराना। अब रूप गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मर्तिदम तत्रादरो न पर। चैतन्य महाप्रभु का मत यह था न पर और कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। तो हम लोग उनके फॉलोअर हैं तो ईसम, ईसम मतलब ब्रजनंदन श्याम सुंदर, और ईसा अवतारकान, भगवान के विभिन्न अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। एक एक कार्यों में एक एक अवतार, जैसे उदाहरण के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कितने भगवान अवतार ले लिए, कच्छप अवतार लिए, उसके बाद स्वयं विष्णु के अवतार के से ऊपर बैठे हुए थे मंदराचल पर्वत के ऊपर, और बासुकी नाग को पकड़े हुए थे भगवान, मोहिनी अवतार लिए, उसके बाद धन्वंतरी अवतार लिए, कितना अवतार एक साथ में ले लिए भगवान। तो ईसा अवतारकान तो कितना हो गया, एक दो तीन चार। तत्प्रकाशांश, भगवान छह प्रकार से इस संसार में आते हैं, छह प्रकार से उनका अवतार होता है। एक कहलाता है पुरुषावतार, जिसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, या कारणोदकशाही गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। उसके बाद हैं लीलावतार, जो स्वयं श्याम सुंदर आते हैं, या अन्य अवतार हैं जो कि लीला किए हैं कुछ न कुछ, नरसिंह भगवान भी लीला अवतार। उसके बाद है सत्यावेशा अवतार, कोई जीव होता है जैसे नकुल ब्रह्मचारी थे, भगवान अपना शक्ति आवेश करते हैं, परशुराम जी हैं, ये सत्यावेशा अवतार है। उसके बाद है मनवंतरा अवतार, भगवान मनु के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं। उसके बाद है जुगा अवतार, भगवान अनेक युग में, चार युग में आते हैं, रक्त पीत श्याम, ऐसे चार वर्ण हो रहे हैं उसका। तो जुगा अवतार कितना हो गया है? और कौन बाकी रह गया? गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, गुणावतार, हाँ, पुरुषावतार कर्णदक साई गर्भदक साई क्षेत्रक साई, और गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये छह अवतार के रूप में इस अवतार अकान, ये भगवान इन अवतारों के रूप में आते हैं। और तत्प्रकाशंश, भगवान के अनेक अंश अंशांश और विभिन्नांश जो है वो प्रकाश कहलाते हैं। इन लोगों का भेद जो है चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बतलाए हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म के भेद से उनका नाम भेद है। कभी शंख ऊपर है, गदा चक्र और पद्म नीचे है तो एक नाम होगा, कभी ये दोनों नीचे और ये दोनों ऊपर हो गया दूसरा नाम होगा, तो ऐसे ऐसे अलग उनके प्रकाश का। और तस् शक्ति, और भगवान के पोटेंसी जो अंतरंगा शक्ति हैं, श्रीमती राधा रानी से लेकर के अंतरंगा बहिरंगा इत्यादि जितनी भी शक्तियां तथा उन शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। तस् शक्ति ईसम कृष्ण चैतन्य संगकम, जो जो वे परम भगवान हैं, जो जो ईश हैं वो हैं श्री कृष्ण चैतन्य। तो उन श्री कृष्ण चैतन्य का यहां पर वर्णन किया गया है। दूसरा श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ देशे गौड़ादये पुष्पवंतौ चित्रौ संदौ तमोनुदौ। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेज ऑन टू श्री कृष्ण चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंद हु आर लाइक द सन एंड मून दे हैव अराइजन सिमिलरली ऑन द हराइजन ऑफ गौड़ टू डिस्पाइट द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड दस वंडरफुली बेस्ट ऑफ बेनेडिक्शन अपॉन ऑल। हम लोग देखे हैं चंद्रमा और सूर्य को उगते हुए, लेकिन दोनों दो क्षितिज में रहते हैं। एक दिन आता है जब चंद्रमा उगते हैं और सूर्य डूबते हैं और दोनों दिखाई पड़ते हैं साथ में एक समय में। और पता है वो दिन कौन है? हाँ, किसी को याद है? अब सब लोगों को याद है, अभी याद नहीं आ रहा है, पता है सबको। और वह है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का वह दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों होराइजन में दिखाई पड़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहे हैं और चंद्रमा उदित हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कहा गया कि दोनों उदित हो रहे हैं एक साथ में। सूर्य और चंद्रमा दोनों उदित हो रहे हैं। कृष्णदास कविराज क्या भाषा है, कहते गौड़ोदय पुष्पवंतौ, गौड़ उदय पुष्पवंतौ। अकेले नहीं आ रहे हैं, दोनों पुष्पवंतौ, दोनों दो हैं, यानी सूर्य और चंद्र दोनों उदित हो रहे हैं और दोनों का काम है क्या? प्रकाशित करना लोगों को। तो एक स्पेशल ये है, इसका वर्णन आगे मैं तो कल सूत्र रूप में बतला रहा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन आगे है। उसके बाद कहते हैं व्हाट द उपनिषद डिस्क्राइब एज द इम्पर्सनल ब्रह्मन इज अबाउट द इफल्जेंस ऑफ हिज बॉडी एंड द लॉर्ड नोन एज द सुप्रीम सुपर सोल इज अबाउट हिज लोकलाइज्ड प्लेनरी पोर्शन। लॉर्ड चैतन्य इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हे कृष्ण हिमसेल्फ विथ फुल विशिक्स ऑफ लेंसेज ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड नो अदर ट्रूथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में श्लोक का वर्णन किया गया है, बदंती तत्त विदत्व जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वस्तु एक है, बदंती तत्त विदत्व तत्व एक है, ईसम एक है, लेकिन विद्वान लोग तीन रूप में वर्णन करते हैं। यहां पर कहा गया उपनिषद इसको तीन रूप में डिस्क्राइब करता है, एक ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। वस्तु एक ही है। मैं मोटा मोटा उदाहरण देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति जंगल को देखे, बहुत दूर से देखेगा जंगल को तो धुआं जैसा धुंधला कुछ दिखाई पड़ेगा, थोड़ा और नजदीक जाएगा तो हरा भरा कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो पहाड़ पर चढ़ जाएगा तो विभिन्न प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, आम का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, पक्षियां दिखाई पड़ेगी, पशु दिखाई पड़ेंगे, झरने दिखाई पड़ेंगे, नदियां दिखाई पड़ेंगी, तालाब दिखाई पड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। और तीनों लोग एक ही वस्तु को देख रहे हैं, वह है पहाड़, लेकिन जो बहुत दूर है वह अपना कंक्लूजन दे रहा है पहाड़ के विषय में, कोई धुंध का बहुत बड़ा अथाह समुद्र है। जो थोड़ा नजदीक है वह कहता है कुछ हरा भरा चीज है। और तीसरा जो पहाड़ पर जाता है, वो पहाड़ को देखता है, वह पहाड़ का वर्णन करता है। अब तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? पार पड़ गया। वस्तु को तीनों ने देखा लेकिन एक का ज्ञान बहुत हेय ज्ञान है, दूसरे का थोड़ा रिफाइंड है और तीसरे का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण दिए हैं, जब ब्रिटिश राज में प्रथम बार जब ट्रेन आया है, तो तीन लोग ट्रेन को देखे। एक गया कि ट्रेन आ रहा है, देखा उसकी लाइट आया तो भाग कर उसके कैसा लाइट है, कैसे ट्रेन है, अरे वो तो प्रकाश का पुंज है। दूसरा गया थोड़ा तो वेटिंग किया, प्रकाश के विषय में सुन लिया, थोड़ा तो वेटिंग किया, देखा ट्रेन चला गया। उसे पूछा ट्रेन कैसा है, कहा वो मैच बॉक्स का जुड़ा हुआ जैसा है, मैच बॉक्स जुड़ा हुआ उपमा दिया है। और तीसरा जो ट्रेन रुका उस पर चढ़ा, देखा उसे पंखा भी है, बैठने का सीट भी है, डब्बा है, सब कुछ है, उसे पूछा गया था, वर्णन किया। तो ट्रेन एक ही वस्तु है लेकिन देखने वाले तीन प्रकार के लोग हैं। तो वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन समझने वाले तीन हैं। एक कहलाते हैं ज्ञानी, जो भगवान के ब्रह्म इपल्जन पर ध्यान करते हैं। एक होते हैं योगी, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप पर ध्यान करते हैं। और एक होते हैं भक्त, जो भगवान का भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से भगवान को समझते हैं। तो यह भगवान जो परम भगवान है वे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। अब आगे का जो श्लोक है अनर्पित चरिम चर्याप, वो नेक्स्ट संडे होगा कि भगवान इस धराधाम पर क्यों आए थे, तो वहां से श्लोक प्रारंभ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनीबडी है एनी क्वेश्चन? विशंबर चैतन्य प्रभु क्वेश्चन पीछे विशंबर को।
हरे कृष्ण गुरु, आप बोला है शिष्य गुरु जो कुछ सिखाता है बापू, जिस तरह देखता है जो कोई सुन रहा है भागवतम, भागवतम में गीता सुन रहा है, सुनने के बाद तो थोड़ा नींद आ जाता है, तो उसको बोलता है प्रभु जी, तो वो कोई 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 तो उठ जाता है, कोई कोई बोलता है नहीं हम सुन रहा है, तो वो उसको कैसे सुनते हैं बोलता है
नहीं। वो शिक्षा गुरु नहीं था, वो पथ प्रदर्शक गुरु था। रास्ता भटक रहे थे, वो रास्ता बता दिया कि भाई उठ जाओ सो मत। वो शिक्षा गुरु नहीं है। वहां पर मैं पथ प्रदर्शक गुरु का उदाहरण दिया था, तो पथ प्रदर्शक है। और जो सो रहा था उठ गया, अति उत्तम। और जो आंख बंद करके सो रहा था या आंख बंद करके सुन रहा था और कहना नहीं मैं तो सुन रहा हूं, उसका भी कल्याण हो, आपने कुछ गलती नहीं किया। तो पानी में डूबकर जो पानी पीता है तो क्या करेंगे, यदि वो कह रहा है कि मैं आंख बंद करके सुन रहा हूं तो पानी में डूबकर वो पानी पी रहा है, समझिए कहने का मतलब। जो आंख बंद करके कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं, तब तो उसको कौन, प्रभुपाद जी कहते हैं जो जगा हुआ है, जो सोया हुआ है तो जगा सकते हो, जो सोने का ढंग कर रहा है तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है, तो बहाना बना दे। आप तो उतना ही कहे, मैं तो कहता कितना गुस्सा करता है, क्यों डिस्टर्ब करता है, मैं सुन रहा हूं ध्यान से, वो भी होता है। एनीवे वो व्यक्ति पथ प्रदर्शक गुरु कह रहा था, शिक्षा गुरु नहीं। हाँ माइक माइक
करने
सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए।
मेरा तो ये है कि यहाँ उसे दीक्षा लेना चाहिए।
यदि वो वैष्णव गुरु से दीक्षा लिया तो दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो वैष्णव गुरु नहीं है तब दीक्षा लेनी चाहिए।
वो
मास स्लॉटर हुआ था, मास स्लॉटर होता है ना, नहीं मास मतलब बहु संख्या में पानी छिड़क दिया तो हमारे चेले हो गए। वो दीक्षा है ही नहीं, वो दीक्षा नहीं है, वो तो भिक्षा के लिए दीक्षा दिए थे, वो गुरु दक्षिणा के लिए ताकि अब पैसा लाओ, वो तो बिजनेस था। तो जिस बिजनेस में घाटा होता कोई बिजनेस करोगे फिर से छोड़ दोगे ना, क्यों सब करने का, जिसे फायदा हो तो करो ना। और कोई प्रश्न, आप में से कितने लोग हैं पानी छिड़क करके दीक्षा ले लिए हो? बहुत लोग करते हैं, पानी छिड़क दिए जितना दूर गया, कुछ न कुछ जोर से बोलते हैं आप, अब मैं दीक्षा देने जा रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी जो लोग सुन लिया वो सब मेरे शिष्य हो जाएंगे। अब आवाज क्या बोलेंगे, ओ सब मेरे चले हो गए, अब जाओ दक्षिणा लेकर के आओ। तो ऐसे भी गुरु लोग हैं। आज ही मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी कहे कि मैं आप लोगों, मैं धन कमाने नहीं आया, अमेरिका में आया मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। यहां पर लोग $100 $50 दीक्षा देकर के पैसा लेते हैं, धन कमाना तो मैं बहुत पैसा कमा लिया होता है, मैं धन कमाने नहीं आया। तो प्रभुपाद जी दीक्षा दिए, या हमारे इस्कान में जो है वह है कृष्ण को संबंध जोड़ने के लिए, कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए। और कोई प्रश्न? हाँ, आकर्षक माधव प्रभु। वो ब्रह्म कुमारी वाले वैसे ही दीक्षा देते हैं, हैं? यदि कोई वैष्णव है और वैष्णव उससे कोई दीक्षा ले लिया है तो शास्त्र कहता है कि दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अलग होते हैं। तो दीक्षा आप ले, जैसे कोई गौड़ीय मठ का मान लो, कोई गौड़ीय मठ से दीक्षा ले लिया है तो कोई फोर्स नहीं को पुनः दीक्षा ले, वो शिक्षा ले सकता है। शास्त्र ये कहता है कि तुम शिक्षा लो, शिक्षा गुरु बना लो किसी को, शिक्षा लो, लेकिन दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो यदि पहले ले लिया है तो नहीं लेना चाहिए, और यदि फिर से ले लिया तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, जा करके उस गुरु के चरणों में जिसे पहले दीक्षा लिया था क्षमा मांगना चाहिए। वेल, तब आप अपने गुरु से पूछो क्या करूं, क्यों कर्मफल तो कहीं लगेगा, अपराध तो है, ये वैष्णव अपराध है। और जब अपराध होगा तो आप भक्ति कर सकते हो। अपराध, अप मतलब खत्म हो जाना, राध मतलब प्रेम, तो भगवान का जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। भक्ति कर सकते हो, भक्त बन सकते हो, लेकिन कृष्ण का प्रेमी नहीं बन पाओगे जब तक से वो वैष्णव क्षमा न करे। दुर्वासा मुनि को जब तक से अमरीश जी क्षमा नहीं किए भगवान भी क्षमा नहीं कर पाए। तो चाहिए कि जाकर के जिस गुरु से दीक्षा लिए थे उससे क्षमा मांगे। यदि वे इस तरह धाम पर नहीं हैं तो दूसरे गुरु से, रामचरण दास आए कि नहीं आजकल, कहां है? जो जिस गुरु से दीक्षा अभी लिए हैं उससे जाकर पूछे कि मैं क्या करूं, यदि वो कर्म फल वो लेने के लिए तैयार है नए गुरु, तब आप फ्री हो। लेकिन आप अपने दिल पर लेकर के मत ढो। इस शास्त्र का बात है। प्रैक्टिकल तो एक बार दीक्षा ले लिए, फिर अमेरिका जाने का ये गुरु जी टिकट देंगे, इनसे दीक्षा लेता हूं, तो दीक्षा ठीक नहीं, ये तो व्यापार हो गया। कहते हैं कि दीक्षा एक गुरु से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है, भगवान डबल है ही नहीं। भगवान एक है और उनका उनसे संबंध जुड़ाने वाला एक ही आदमी है और वह कहलाता है गुरु। तो एक ही आदमी, जैसे उदाहरण के लिए आप नामांकन कराने कॉलेज में जाओ, ठीक है, वहां 10 क्लर्क लोग बैठे हुए हैं, तो एक ही क्लर्क के पास आप जाओगे ना, आप कहोगे कि 10 क्लर्क क्यों नहीं कर सकते हमारा नामांकन, ये नहीं होगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका एडमिशन होना, और वो क्लर्क भाया मीडिया है एडमिशन करने का, ठीक है ना, चाहे एक कलर किया चाहे वो कलर किया, डजंट मेक डिफरेंस। दीक्षा जो है एक प्रोसेस है, एक फॉर्मालिटी है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है। दीक्षा जो है फॉर्मालिटी है, और वो भी फॉर्मल ऑफ कर दिएगा, पहले ऐसे भी नहीं था, पहले धूल फेंक दिए हो गया, दीक्षा हो गया उतना ही। शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे ही डुला रहे हो कि सही में समझ गया। नहीं, शास्त्र का विधान है कि एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। हाँ बोलिए रामचरण जी। न मैं देखा नहीं रामचरण राधा रंजन, वो डॉक्टर रविंद्र कहाँ है?
दत्ता
ने 17 नहीं ज्यादा थे, 24 थे, लेकिन वो लोग शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। तो आप क्लास में लेट आए, मैं बताया कि दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। वन कैन हैव मेनी इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, बट वन शुड हैव ओनली वन इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। और दादा देखे 24 गुरु थे, उसमें से कुत्ता भी था, एक बेस्या भी थी। हाँ प्रेम हर नाम प्रभु पास जी भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, भूख लगा है सबको, आज फीस्ट है सबके लिए हैं, गोविंद की धारी प्रभु तरफ से आज फीस्ट है। नहीं, ये डेली सबको समोसा और स्वीट खिलाते हैं, आज भक्तों को खिलाएंगे। हाँ
तो एक तरह से जैसे इंस्ट्रक्टिंग इनिशिएटिव स्पिरिचुअल मास्टर सब आइडेंटिटी
इक्वल एंड आइडेंटिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। हाँ
और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि शिक्षा दीक्षा समान है, लेकिन दूसरी ओर ये सिर्फ औपचारिकता की ही बात है कि दूसरे गुरु से एक बार दीक्षा गुरु दूसरे गुरु से नहीं लेना चाहिए, या जिसमें दूसरा भी कोई रहस्य है। कहने का मतलब कि अगर एक क्योंकि अगर एक ही दीक्षा गुरु है तो फिर उसको स्पेसिफाई किया जाए, दीक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक है, एक होता है उसको दूसरे से नहीं लेना है, औपचारिकता की ही बात है कि उन्होंने टिकट देख लिया इसलिए क्षमा मांगनी है, क्या इसमें दूसरा और कोई तथ्य है कि लॉयल्टी टू स्वीकर मास्टर सभी को स्वीकर मास्टर, क्योंकि शास्त्र में इसका बहुत
देखिए एक शास्त्र का सम्मत है और दूसरा है इंस्टीट्यूशन का। हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं यहां पर। शास्त्र के अनुसार गुरु के अपॉइंटमेंट नहीं होता है, गुरु कोई होता है क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो आपके दिल में परमात्मा है जो कि असली गुरु है, चित्त गुरु, और वो डायरेक्ट करते हैं भक्त को अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास कि ये व्यक्ति मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम इससे दीक्षा लो। ये स्वाभाविक दीक्षा है। लेकिन इंस्टीट्यूशन चलाना है तो इंस्टीट्यूशनल जितने गुरु हैं ये मात्र फॉर्मेलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। संबंध स्थापित शिक्षा गुरु से भी हो सकता है। शिक्षा ही है जो कि हमको भगवान से संबंध स्थापित कराता है, न कि दीक्षा। होली नेम के लिए दीक्षा की जरूरत भी नहीं है। नाम जप करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, कोई दीक्षा नहीं लिया है और हरे कृष्ण जप करा मर गया तो भगवान धाम में नहीं जाएगा। होली नेम दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये तो पुरुषचर्या विधि है, ये तो फॉर्मेलिटी है बेसिकली। तो इंस्टीट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं।
लेकिन उस बेसिस पे सभी जो अपॉइंटेड गुरुज है उनको अपॉइंटेड गुरु से कैटेगरी, उसमें भी कैटेगरी हो सकते हैं।
वो कौन चेक करने जाए कि किसका कैटेगरी क्या है?
इससे बहुत फेथलेस डेवलप होगा पूरी सोसाइटी।
नहीं, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि ये सीनियर जूनियर में दीक्षा शिक्षा भी नहीं, मान लो आप हो और मैं हूं। यदि मैं समझता हूं कि आप मुझसे कृष्ण से नजदीक हो या कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग आपसे मुझसे ज्यादा है, तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे कि आपका हमारा संबंध ऐसा हो जैसे गुरु और शिष्य का हो, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के रूप में। कीप इन माइंड, ये किसी व्यक्ति का यहां पर नहीं चलता है शिक्षा दीक्षा हो गुरु और शिष्य के विषय में। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रसाद आशीर्वाद किसका होता है? गुरु और कृष्ण का, इंस्टीट्यूशन का नहीं, व्यक्ति विशेष का नहीं। तो कृष्ण आपके लिए चुनेंगे कौन व्यक्ति है जो आपको हमारे पास ला सकता है और उसको आपको देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा प्योरिटी कैसा है। यदि हमारा प्योरिटी 100% है तो कृष्ण वैसे गुरु के पास लाएंगे जो लॉयल हो, जो 100% हो। ये नहीं तो संसार में चीटर और चीटेड की कमी नहीं है। संसार चीटर, और हम क्या चाहते हैं? हम कृष्ण को चाहते हैं तो कृष्ण जरूर उस व्यक्ति को इस कान में भेजेंगे। ये प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित इसका एक ही मोटो है, टू रिक्लेम एवरीवन बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो जितने भी वैष्णव हैं हेल्प कर रहे हैं प्रभुपाद जी को इसी काम में, रिक्लेम करने में।
तो इस विषय में सभी चीजों को एनकरेज करना चाहिए। जैसे हम चीजों को बोल रहे हैं कि संस्था अभी प्रभुपाद जी की संस्था है, प्रभुपाद जी से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस स्थिति में फिर ज्यादा जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ओवर एम्फेसिस करना, दैट इज टू सिंपलेसनेस।
नहीं क्या, उसमें तकलीफ क्या हो गया है कि अंडरस्टैंडिंग, जब तक से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। यदि दो बेटे हैं और एक बेटा किसी प्रकार से सोचता है कि पिताजी उसको ज्यादा भाव देते हैं, तो उसमें इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो एक्सपर्ट बाप क्या करता है, वो बैलेंस करने का प्रयास करता है। बैलेंस करने के प्रयास में ऐसा नहीं सोचता है कि उसका फेथ हमसे खत्म हो जाए या फेथलेसनेस उत्पन्न हो जाए, वो बैलेंस केवल करना चाहता है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस्कान हैज गॉन इन डिफरेंट वे, नाउ जीबीसी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट, नथिंग मोर। Nobody is saying nobody should respect the Vaishnava, nobody should respect the Gurus, no. That is, वो अपराध हो जाएगा. रिस्पेक्ट होना चाहिए. वो तब आएगा जब प्रभुपाद जी से कनेक्शन देखेंगे तब. रामानुजाचार्य संप्रदाय में कोई कंफ्यूजन नहीं है, माधवाचार्य संप्रदाय में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक कि गुरु गोविंद ये सिख लोग जो हैं वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुरु गोविंद है बस. तो प्रभुपाद आचार्य हैं, इसमें जब कंफ्यूजन होगा तब सब कंफ्यूजन होगा. हाँ, जब एक कंफ्यूजन नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. प्रभुपाद जी का पोजीशन अब्सोल्यूट पोजीशन है, वे आचार्य हैं.
एक तत्व की बात हो रही है और दूसरा जो नए लोग
हैं उनको तत्व का जहां तक बात है वो कृष्ण डिसाइड करेंगे, इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करेगा. आप नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, वो कृष्ण करेंगे. कृष्ण करेंगे और कृष्ण शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र उनके द्वारा धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत धर्म उनके द्वारा आधारित किया गया है, तो कुछ गलत ऐसा नहीं कृष्ण करेंगे. बैलेंस करी का तरीका है दोनों साइड देखना.
हाँ, नहीं, और दूसरा है कि ऑडियंस के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है, क्योंकि नए व्यक्ति को ये चीज को समझना थोड़ा
तो पहले गुरु में श्रद्धा नहीं है. इसीलिए अच्छा है कि बिटर पिल दे करके रोग को दूर किया जाए बजाय कि शुगर कोटेड दे करके. समटाइम बिटर पिल इज बिटर. वेल, दैट उसके लिए अलग तरीका है विच जीबीसी आर वर्किंग ऑन हाउ टू इंजेक्ट सो दैट पीपल डोंट फील पेन. जैसे माँ दवा देती है तो हनी मिला देती है, थोड़ा मीठा लगे भाई ले लो, तो हो रहा है, आ रहा है. वी हैव कम ए लॉन्ग वे. हमने 70 देखा था, 80 देखा था, 90 देखा, 2000 देखा, 2000 ऊपर 4 डेकेड में देखा हूं. तो मैं देखा हूं कैसे कैसे कहां कहां आया है. पहले तो आप गुरु से मिल भी नहीं सकते थे, अभी तो मिल सकते हो. पहले तो गुरु भगवान थे, उनके भाया 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 जाना पड़ता था, बहुत था. एनीवे, लेट्स नॉट डिस्कस हियर. हम लोग यहां पर दूसरा कुछ बात करें, शास्त्र का तो वही बात करते हैं. इंस्टीट्यूशन का बात नहीं, वो मीटिंग में करेंगे. इंस्टीट्यूशनल बात मीटिंग में. और देखिए क्या है ना कि रियली ये सब सोचने से प्रभुपाद का ग्लोरी और इनहेंस होता है. प्रभुपाद जी कहे हैं कि स्कान 10,000 ईयर्स तक चलेगा. तो 10,000 तक ईयर तक चलने के लिए मास्टर प्लान प्रभुपाद जी बना दिए थे. यदि आज ही मान लिया जाए, आज ही मान लिया जाए कि सब कहें कि हमारा गुरु श्रेष्ठ है, मैं कहा सब गुरु श्रेष्ठ हैं, लेकिन शिष्य लोग डंडा लेकर खड़ा हो जाएंगे, हमारा गुरु श्रेष्ठ है, हमारा गुरु श्रेष्ठ है, यही मार कर खत्म हो जाएगा. 10,000 के बहुत दूर पड़ जाएगा. तो प्रभुपाद जी को फोकस रखेंगे. प्रभुपाद जी सूत्रधार हैं, ही इज द सेंट्रल पॉइंट, देन एवरीथिंग विल बी सिस्टमेटिक. नहीं तो भाई ये तो फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन क्या होगा, थर्ड जनरेशन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. तो देयर फॉर वी नीड टू एस्टेब्लिश प्रभुपाद हिज पोजिशन वेरी स्ट्रांगली. यस, क्या क्या पहले शिष्य पहले छात्र हो तो गुरुकुल को सोचेंगे. गवर्नमेंट हाँ वो भी एक तरीका है, लेकिन हम लोगों का तरीका अलग है. पहले छात्र होंगे तब व्यवस्था करेंगे, नहीं तो गुरुकुल बना दिए कोई यहां पर है ही नहीं, तो कुत्ते जाकर के बैठेंगे, पैखाना करेंगे उसके अंदर. इस्कान मंदिर भी गुरुकुल है, जिसको सीखना है तो आए यहां पर ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेना शुरू करें और धीरे धीरे जब देखेंगे संख्या बढ़ेगी तो हम कर सकते हैं. गुरुकुल हम स्कूल नहीं बनाएंगे, गुरुकुल बना सकते हैं. हम तो गुरुकुल बना सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोग गुरुकुल में रहते हैं सब, देखो सब गुरुकुल के बच्चे हैं, जितने उजला कपड़ा देख रहे हैं ना सब गुरुकुल के बच्चे हैं, हमारे प्रोफेसर हैं। खड़ा हो जाओ, खड़ा खड़ा, हाँ कुर्मा उतर खड़ा हो जाओ, ये हमारा एक प्रोफेसर है, प्रेम अन्ना ब्रो खड़ा हो जाओ, ये प्रोफेसर है हमारा प्रेसिडेंट है, ये खड़ा हो जाओ, ये बनारस गुरुकुल में पढ़ाता है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, गुरुकुल है, चिंता मत करो। आप अपने आपका बेटा है किधर है भाई, हाथ उठाओ, हाँ आ जाओ। कितना किस क्लास में पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ते बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो, फोर्थ में, वेरी गुड, चलो बैठो। हाँ तो आप लाइए यहां, लेकिन मटेरियल एजुकेशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, यहां पर एबीसीडी वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, कॉमन मिलेगा लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ज्ञान नहीं मिलेगा। यहां पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्व मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ए वाला ज्ञान मिलेगा, ठीक है। उसके लिए तैयार हो तो हम तो रास्ता खोले हैं, 100 गुरुकुल बनाएंगे, एक नहीं 100 गुरुकुल बनाएंगे। और कोई प्रश्न, हाँ आप प्रमेयम इधर माइक दे दीजिए, माइक अब दो प्रश्न और उसके बाद बंद। शिक्षा गुरु,
शिक्षा गुरु का परंपरा है,
शिक्षा परंपरा है,
शिक्षा से ही किसी को सही ज्ञान मिल सकता है। तो अगर जैसे कार्य शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, तो जब कभी कई बार क्या होता है कि कोई सिद्धांत किसी रूप से दे रहा है, किसी रूप से दे रहा है, उसमें भी कई बार कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन शिक्षा गुरु के लिए कार्य की शिक्षा गुरु परंपरा है, वहां पर कह सकते हैं कि कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं, और शिक्षा गुरु के लिए कार्य के लिए एक ही शिक्षा गुरु रहेंगे। जबकि
लेकिन मैं कहता हूं कि वो दीक्षा गुरु पहले शिक्षा गुरु है। एक कॉन्वेंसिंग के द्वारा आप दीक्षा मत लो। कोई कह दिया कि मेरे गुरुजी का नाक लंबा है, तुम्हारा नाक लंबा है, दीक्षा ले लो, ऐसे मत लो, पहले शिक्षा ग्रहण करो।
शिक्षा गुरु उसके द्वारा कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो रहा है, कृष्ण से ये आसक्ति हो रही है, संसार से अटैचमेंट हट रहा है,
वही दीक्षा गुरु होगा। जो शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं गुरुन इदि पुलरी नंबर, बिकॉज एनीवन हु गिव्स स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द रिवील स्क्रिप्चर एक्सेप्टेड एज स्पिरिचुअल मास्टर, although others gives help showing the way to beginners, the guru who first initiate one with mahamantra is to be known as initiator, and the saint who gives instruction for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual master. The initiating and instructing spiritual master are equal and identical manifestation of Krishna. जब हम दोनों को एक स्तर पर देंगे तकलीफ नहीं है, तकलीफ तब हो रहा है जब हमारे दीक्षा गुरु हैं, सीनियर हैं, थोड़ा दीक्षा गुरु डाउन है, वहां तकलीफ हो रहा है, और वही अर्जकली हो रहा है आज। एनी अदर क्वेश्चन, हाँ इधर आप तत्व,
जब हम खुद आचरण करते हैं तो उसका जो प्रभाव है थोड़ा यानी कि अधिक होता है, पर जब हम कुछ प्रचार करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है, जैसे कि अभी कई भक्तों ने प्रश्न पूछे हैं, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो जिसको हमारे जीवन में आचरण करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो खुद आचरण नहीं हो पा रहा है, पर अभी सामने वाले व्यक्ति ने पूछा तो है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद तो इतना पालन नहीं हो पा रहा है।
कहा जाता है कि उतना ही खाओ, कैसे, हाउ टू बाइट व्हाट यू कैन च्यू, जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलना चाहिए, नहीं तो मच्छर काटेंगे, ठंडा लगेगा है? तो आपको, हम लोगों को नेचुरल रहना चाहिए, किसी को फुलाने से फूल मत जाओ, जितना है उतना ही में रहो, जितना आप आचरण कर सकते हो उतना ही करो, किसी को दिखाने के लिए आचरण करो बीमार हो जाओगे, आर्टिफिशियली आचरण मत करो, जो हो सके उतना ही करो। एक दिन था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे कूद जाऊंगा तो कोई तकलीफ नहीं था, आज आपको दिखाने के लिए कूदूंगा ना हाथ पर टूट जाएगा। उतना ही करो जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन करो, आचरण जरूर करो। जैसे उदाहरण के लिए, चलो सब मिलकर के गुंडीचा मार्जन मंदिर सफाई करेंगे, वहां आ जाना भी साथ में आचरण हुआ। एक कुछ नहीं कि हॉर्स पाइप लेकर के पूरा पानी डालो, पूरा झाड़ू मारो अकेला, नहीं, वहां साथ में आ जाना वो भी आचरण है। तो जितनी क्षमता है उतना ही करो, भगवान सबको अलग अलग क्षमता, और भगवान क्षमता को देखते हैं, भगवान उस इनिशिएटिव को देखते हैं। वो कथा जानते हो ना, हनुमान जी और वो गिलहड़ी, गिलहड़ी बेचारी छोटा छोटा करती थी, हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर साइड से हट जाए, भगवान ने कहा कोई बात नहीं आ जा, ये हमारी भगत है, अभी उसके पीठ पर चेहरा है, भगवान राम का चिन्ह है। तो भगवान ए यथा माम प्रपदंते तथियो भजामि, भगवान देखते हैं कौन कितना कर रहा है, ठीक है उतना ही करो। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराशि भागवतम की जय।